माधव जी, आप मम्मी जी को कह दीजिए ना कि इतना ना खिलाया करे मुझे। माधव जैसे ही कमरे में आया, राधिका की बात सुनकर उसकी हैरानी भरी नजरें आवाज़ की दिशा में घूम गई। क्यों, क्या हुआ राधिका? राधिका जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, एक झटके से माधव की ओर पलट गई। देख नहीं रहे कितनी मोटी हो गई हूँ मैं? 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, पर लगता है जैसे 16 महीने प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर माधव की हंसी छूट गई और उसको हंसते देखकर राधिका गुस्से से भड़क गई। आपको हंसी आ रही है? मैं क्या कोई चुटकुला सुना रही हूँ यहाँ जो आप जबड़ा फाड़कर हंस रहे हैं? राधिका का गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर माधव हंसते हंसते एकदम से रुक गया। चुटकुला तो नहीं सुना रही, पर आपकी बात सुनकर हंसी आ गई मुझे। 16 महीने प्रेग्नेंट? सीरियसली? 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है राधिका, कहते हुए एक बार फिर उसकी हंसी छूट गई और उसे यूं हंसते देख राधिका ने नाराजगी से अपने मोटे मोटे गालों को फुला लिया। कितने बुरे हैं आप, यहाँ मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और आपको हंसी आ रही है? नाराज क्यों हो रही हैं? चलिए, नहीं हंसता, देखिए अब बिल्कुल शांत हूँ। माधव ने अपनी हंसी को कंट्रोल किया, पर लबों पर अब भी मुस्कान कायम थी जिससे राधिका खींच उठी। पर अभी भी मुस्कुरा रहे हैं ना आप? आपको मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही? राधिका ने झुंझलाते हुए अपना मुंह फेर लिया। माधव तुरंत ही चेहरे पर गंभीर भाव लिए अपनी रूठी बीवी की ओर बढ़ गया। प्रॉब्लम क्या है राधिका? सवाल सुनते ही राधिका तुनकते हुए बोली, दिख नहीं रहा आपको कितनी मोटी हो गई हूँ मैं? आप ज्यादा सोच रही हैं राधिका, प्रेग्नेंसी में लड़कियां थोड़ी हेल्दी हो जाती हैं, बाद में वापस पहले जैसी हो जाएंगी। माधव ने उसे समझाने की कोशिश की, पर राधिका अब परेशान हो गई। आप समझ नहीं रहे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। स्कूल में कितनी टीचर्स ने मुझसे पूछ लिया कि ट्विन्स हैं क्या, मम्मी जी ने खिला पिलाकर मुझे इतना मोटा कर दिया है। देखिएगा, डिलीवरी में बहुत तकलीफ होगी मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा राधिका, और मम्मी आपको खिलाती पिलाती हैं क्योंकि चाहती हैं कि आप और हमारा बच्चा दोनों हेल्दी रहें। आपके शरीर को अभी न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे का ठीक से विकास हो, और डिलीवरी के बाद भी आपको उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होगी। अगर आप खुद कमज़ोर होंगी तो कैसे करेंगी ये? माधव प्यार से उसके गाल को अपनी हथेली से सहलाते हुए संजीदगी से उसे समझा रहा था। राधिका ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी, फिर मुंह फुलाते हुए मायूसी भरे स्वर में बोली, वो सब तो ठीक है, पर मैं ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। वापस पतली हो जाएगी आप, डिलीवरी हो जाने दीजिए, उसके बाद हमारा बच्चा आपको इतना परेशान करेगा, अपने आगे पीछे इतना दौड़ाएगा कि आप एकदम सूखकर कांटा हो जाएंगी। माधव ने राधिका को किस कदर परेशान देखकर मजाकिया अंदाज में ये बात कही थी। राधिका ने नाराजगी से उसे घूरा तो माधव हंस पड़ा। जाइए, मैं नहीं करती आपसे बात। राधिका ने अपने गाल पर से उसका हाथ झटका और एक हथेली को अपने पेट पर रखे धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए बेड की ओर बढ़ गई। माधव भी उसके पीछे लपका। राधिका, नाराज हो गई क्या? हाँ, मुंह फुलाए बैठी राधिका ने तुनकते हुए तेज स्वर में जवाब दिया। माधव उसके पास बैठ गया और उसकी उंगली में अपनी उंगलियों को उलझाने लगा। मैं मम्मी से कहूंगा कि आपको इतना भी ना खिलाया करे, जितना आपका मन करे बस उतना खाइएगा। अब नाराजगी कुछ कम हुई? नहीं, राधिका ने सपाट लहजे में इनकार किया और उसका हाथ झटकते हुए अपना चेहरा फेर लिया। नाराज थी तो जाहिर कर रही थी। तो कैसे मानेंगी, अब तो मैंने आपकी बात भी मान ली, अब और क्या करूं कि आपकी नाराजगी खत्म हो जाए? बेचारा माधव उसकी नाराजगी के आगे बेबस और लाचार नजर आ रहा था। प्रेगनेंसी के बाद से राधिका थोड़ी जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई थी। मूड स्विंग्स थे कि पल पल उसका मूड बदल जाता और माधव के लिए उसे हैंडल करना जरा मुश्किल हो जाता। राधिका ने कनखइयों से माधव को घूरा और अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, मेरा भेलपूरी खाने का मन है। अभी? मैडम की फरमाइश सुनकर माधव चौंक गया, क्योंकि कुछ देर पहले ही डिनर करके आई थी और अब नई डिमांड कर रही थी। हाँ, अभी, जाइए लेकर आइए। राधिका ने मुंह फुलाए लगभग उसे हुक्म सुनाया और माधव, जिसका काम ही उसकी हर इच्छा पूरी करना था, वो तुरंत बेड से उठकर खड़ा हो गया था। चलिए, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए भेलपूरी बनाकर लेकर आता हूँ। तीखा और चटपटा बनाइएगा वरना मैं नहीं खाऊंगी, पीछे से राधिका ने इंस्ट्रक्शन के साथ साथ धमकी और दे दी थी उसे, जिसे सुनकर माधव मुस्कुराए बिना न रह सका। आपके टेस्ट के हिसाब से ही बनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। माधव चला गया और उसके जाते ही राधिका फिर से खुद को परेशान निगाहों से देखने लगी। असल में बात ये थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो टेस्ट हुए थे उसमें डॉक्टर ने राधिका में कमजोरी बताई थी, जिसका असर बच्चे की ग्रोथ पर पड़ना स्वाभाविक था, तो राधिका के खान पान पर खास ध्यान देना जरूरी था। जैसे ही अनुपमा जी को ये बात पता चली, उन्होंने राधिका के खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। उम्र हो गई थी उनकी, फिर भी आए दिन उसके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती। तरह तरह के लड्डू बनाकर देती थी, कभी मेवों की खीर तो कभी देशी घी में बना लड्डू। दूध तो रोज जबरन पिलाती थी। खाने में हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ गई थी, कुल मिलाकर कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और उन्हीं की मेहनत का फल था कि कमजोरी तो दूर हुई ही, साथ ही राधिका काफी हेल्दी भी हो गई। गाल फूल कर मोटे मोटे हो गए, पेट भी बाहर आ गया था, गोलमटोल सी हो गई थी वो। और यही चिंता भी राधिका को सता रही थी कि वो ज्यादा मोटी होती जा रही है। हालांकि उसकी सेवा में सिर्फ अनुपमा जी नहीं लगी थी, आशुतोष जी रोज शाम को उसके साथ पार्क जाकर टहलते थे, उसे बिठाकर रामायण गीता का पाठ सुनाते हुए उसके आसपास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था।
माधव भी उसकी बहुत परवाह करता था। राधिका का मन होता तो भले ही उसे अनुपमा जी की डांट क्यों ना सुननी पड़े, लेकिन उसकी इच्छा जरूर पूरी करता। जो वो कहती उसे बनाकर देता, उसकी परेशानियों को सुनता, जितना बन पड़ता उसका साथ देता। अनुपमा जी भी अपने अनुभव साझा करती, राधिका बेझिझक खुद को होने वाली हर परेशानी उन्हें बता देती। उसकी परवाह, प्यार और अपनों का साथ ही था कि ये 6 महीने पलक झपकते ही बीत गए थे। अप्पू, उसकी बाकी दोनों बहनें, शिखा, निशा सब उससे मिलने भी आते रहते थे, पर कविता के मन में अब भी नाराजगी जस की तस अमी हुई थी। राधिका बैठे बैठे यही सब सोच रही थी कि माधव हाथ में ट्रे थामे अंदर चला आया। पकड़िए, आप इसे खाइए और पैर आगे कीजिए, कितने सूज गए हैं, मैं जरा मालिश कर दूं। माधव ने भेलपुरी की प्लेट राधिका को पकड़ाई और खुद गर्म तेल की कटोरी लेकर उसके पैर के पास बैठ गया। राधिका ने भी बिना किसी एतराज के अपने पैरों को फैला दिया और भेलपुरी खाने लगी, जिसको चखते ही उसका चेहरा खिल उठा था। राधिका, अब आप स्कूल जाना बंद कर दीजिए, आपको 9वां महीना लगने वाला है। आप बाहर रहती हैं तो मुझे बहुत चिंता होती है, घर पर मम्मी और पापा की निगरानी में रहेंगी तो थोड़ा सुकून रहेगा मुझे, फिर अब आपको आराम भी करना चाहिए। राधिका के सूझे पैरों की मालिश करते हुए माधव ने चिंतित स्वर में ये बात कही। राधिका खाते खाते रुकी और नजरें उठाकर उसे देखते हुए गंभीरता से जवाब दिया, बस कुछ दिन और जाना है, बोर्ड के पेपर्स है ना, तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना ठीक नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है, फिर डिलीवरी के बाद तो छुट्टी लेनी है, तो जब तक कर पा रही हूँ काम कर रही हूँ। माधव कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा था। माथे पर कुछ लकीरें उभरी थीं और चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे। राधिका, आप जानती हैं ना कि मैं आपके, हमारे परिवार और हमारे बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। हाँ जानती हूँ, पर यह भी तो सच है कि अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, खर्च बढ़ने वाला है, और मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर बोर्ड के पेपर शुरू हो जाएंगे और मेरी छुट्टियां भी, फिर मैं अभी जा सकती हूँ। थोड़ी दिक्कत होती है पर मैं मैनेज कर लेती हूँ। डिलीवरी के बाद मुझे छुट्टी चाहिए होगी, क्योंकि तब मेरा हमारे बच्चे के पास रहना ज्यादा जरूरी होगा। अभी जितने दिन जाऊंगी, बाद में उतने दिन ज्यादा रह सकूंगी हमारे बच्चे के साथ।
वैसे तो मैं ये भी सोच रही थी कि 6 महीने के बच्चे को छोड़कर मैं कैसे वापस स्कूल जाऊंगी। एक पल के लिए ख्याल आया कि सब छोड़कर बस अपने बच्चे पर ध्यान दूंगी, पर बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद आत्मनिर्भर बनी हूँ, अब किसी पर आश्रित नहीं होना चाहती, इसीलिए अभी स्कूल जा रही हूँ, बाद में छुट्टी लूंगी और मुमकिन हुआ तो एक्स्ट्रा लीव के लिए भी अप्लाई कर दूंगी। अभी ये सब सोचने की जगह खुद पर ध्यान दीजिए राधिका, आपके और हमारे बच्चे से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है अभी। रखती हूँ मैं अपना ख्याल, बहुत ध्यान से रहती हूँ, और बस कुछ दिनों की बात और है। इसके आगे माधव ने कुछ नहीं कहा। राधिका अपनी जगह गलत नहीं थी, और वो भी सही था। राधिका भेलपुरी के मजे लेती रही, माधव ने उसके दोनों पैरों की मालिश की, फिर जैसे ही वो खाली प्लेट ट्रे में रखकर जाने को पलटा, पीछे से राधिका ने हड़बड़ाते हुए सवाल किया, आप कहाँ जा रहे हैं? ये सब रखकर आता हूँ, आप आराम कीजिए। माधव ने ट्रे की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। माधव जी, मैं स्वार्थी तो नहीं हो रही? राधिका ने सर उठाकर माधव को देखा, जो आंखें मूंद लेटा था, पर उसका सवाल सुनकर आंखें खोले हैरानी से उसे देखने लगा था। मैं कुछ समझा नहीं, किस बारे में कह रही हैं आप? मेरा दिल चाहता है कि कम से कम बच्चे के 2-2.5 साल के होने तक मैं उसके साथ रहूं। उस वक्त बच्चे को अपनी माँ की जरूरत होती है, हर चीज के लिए वो उस पर निर्भर होता है, दुनिया को जान रहा होता है, बढ़ रहा होता है, नई नई चीजें सीख रहा होता है। तब मैं अपने बच्चे के पास रहूं, उसके बचपन को जीऊं, उसे बढ़ते देखूं, उसकी मासूम शरारतों को अपने मन में सहेज लूं, उसकी पालन पोषण करूं, दुनिया से उसकी पहचान कराऊंगी, उसे अपनी ममता के आंचल में सहेज कर रखूं, उसके वात्सल्य का आनंद लूं। जब जब उसे अपनी माँ की जरूरत हो, मैं उसके पास मौजूद रहूं, उसे मेरे रहते माँ की कमी ना महसूस हो, एक माँ होने का हर फर्ज निभाऊं। पर इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, अगर स्कूल ज्वाइन कर लूंगी तो हमारे बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे सकूंगी, उसके बचपन को अपनी ममता और स्नेह से नहीं सींच सकूंगी। जब उसे मेरी जरूरत होगी, शायद मैं तब उसके पास भी ना रह सकूं, उसे आधा दिन मेरे बिना रहना पड़ेगा, मेरे प्यार और वक्त के लिए तरसना पड़ेगा, ये तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। और अगर मैं उसके साथ को चुनती हूँ तो मुझे अपनी जॉब छोड़नी होगी, पर इसके लिए मेरा दिमाग राजी नहीं, मैं दिल और दिमाग के बीच उलझ गई हूँ। अगर अपनी ममता को चुनती हूँ तो बना बनाया करियर छूटता है, और अगर करियर पर ध्यान देती हूँ तो मेरी ममता पर सवाल उठता है, मैं खुद कर्ज माँ बन जाती हूँ, जिसके लिए उसके बच्चे से ज्यादा जरूरी उसकी नौकरी और पैसे हैं। एक तरफ एक माँ है जो अपने बच्चे के बचपन के हर पल को जीना चाहती है, हर लम्हा उसके साथ गुजारना चाहती है, तो दूसरे तरफ एक औरत है जो आत्मनिर्भर बने रहना चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। राधिका बेचैन थी और बुरी तरह से उलझी हुई थी। माधव ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर संजीदा लहजे में जवाब दिया, राधिका, नौकरी आपकी है,
उसे कंटिन्यू करना है या छोड़ना है ये पूरी तरह से आपका निर्णय होगा। अगर आप वापस स्कूल जाएंगे तब भी हमारे बच्चे का ख्याल रखने के लिए मम्मी और पापा होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आधा दिन उसके साथ ही रहूं और आपके आने के बाद ही रेस्टोरेंट जाऊं, ताकि आप निश्चिंत होकर अपने काम पर ध्यान लगा सकें। अगर आप अभी के लिए जॉब छोड़ने का फैसला लेती हैं तब भी मैं इस फैसले में आपका साथ दूंगा और आपके आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाने दूंगा। आप पत्नी हैं मेरी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब संभाल लूंगा। हमारे बच्चे के थोड़े बड़े होने के बाद आप अगर फिर से जॉब करती हैं तब भी मैं उस फैसले में आपका साथ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि टीचर बनना आपका सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है आपने, और मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता कि अपने या अपने बच्चे के लिए आपको अपना सपना छोड़ने कह दूं। साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस है, सम्मान है, आपकी पहचान है, इसीलिए भी मैं ना अभी और ना ही आगे कभी आपको जॉब छोड़ने कहूंगा। आप जो भी फैसला लेंगी मैं उसमें आपके साथ हूँ, बस जो भी फैसला लें ये सोच कर लें कि कल को आपको उस पर पछतावा ना हो। चलिए अब ये सब बातें छोड़िए और सो जाइए, बहुत रात हो गई है। राधिका के दिमाग में बस माधव की कही बातें घूम रही थी। उसने सर हिलाया और माधव के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। माधव प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। धीरे धीरे सारी बातें राधिका के दिमाग से निकल गईं और वो गहरी नींद में सो गई। टू बी कंटिन्यू। राधिका की इस दुविधा का आप क्या हल देंगे?